लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। प्रणवहु पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जास हृदयागार बसहि राम सर चाप धरे। गिराय रथ जल बीच सम कही अति भिन्न भिन्न बंधहु सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय किन। मूल सच्चिदानंद भगवान की जय। जब जब होए धर्म कर हानि बाढ़ाए असुरे अधम अभिमानी तबु तबु प्रभु धरि विविधि शरीरा हरहि कृपानिधि सजन पीरा। हरहि कृपानिधि सजन पीरा। संसार में जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है तो श्री नारायण नारायण रूप से नर रूप में अवतरित होते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए। इसी प्रकार से संसार के अंदर अधर्म चारों तरफ फैला हुआ था। संत महात्मा देवता सब दुखी हो रहे थे। देवताओं की पुकार सुनकर प्रभु ने आकाशवाणी के द्वारा बताया कि हे देवताओं, मैं अयोध्या में महाराज दशरथ के कुल में जन्म लूंगा। प्रभु श्री नारायण महाराज दशरथ के यहां चैत्र मास के नौमी तिथि में दोपहर 12 बजे अवजित मुहूर्त में प्रभु ने अपने अंशों के साथ अवतार लिया, जन्म लिया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नौमी तिथि में अभिजित मुहूर्त में प्रभु ने जन्म लिया। चारों भाइयों का नामकरण हुआ राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। चारों महाराज दशरथ के यहां पलने लगे, बढ़ने लगे। कुछ समय के बाद महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों को गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शस्त्र और शास्त्र के अध्ययन के लिए भेज दिया। गुरु वशिष्ठ ने बड़े ध्यान से, बड़े भाव से चारों भाइयों को शस्त्र और शास्त्र का अध्ययन कराया, पारंगत करवाया और पुनः वे राजभवन में वापस आ गए। उसी समय महामुनि विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के यहां पधारते हैं और अपनी याचना महाराज दशरथ से करते हैं। हे राजन, हम राक्षसों के आतंक से परेशान हैं, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। महाराज दशरथ महामुनि विश्वामित्र से कहते हैं, मुनिवर बोली मैं आपकी क्या सेवा करूं। महामुनि विश्वामित्र महाराज दशरथ से कहते हैं, राजन मैं आपसे और कुछ भी नहीं चाहता हूं, हमें आप अपने दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को दे दीजिए, यही मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे। ये बात सुनकर महाराज दशरथ विह्वल हो जाते हैं, दीन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, हे महामुनि आपने ये क्या मांग लिया, और कुछ मांगते? आपने तो मेरा प्राण ही मांग लिया, आपने मेरी आत्मा मांग ली, आपने मेरा कलेजा मांग लिया। महामुनि,
चौथे पन पायौ सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहूं बिचारी, विप्र वचन नहीं कहूं बिचारी।
हे महामुनि, मैं तो बुढ़ापे में मुझे पुत्र मिले थे, आपने सोच समझकर याचना नहीं की। बहुत दुखी हो गए महाराज दशरथ और मना कर दिया, परंतु गुरु वशिष्ठ के समझाने पर महाराज दशरथ ने राम लक्ष्मण देने की बात मान ली और राम लक्ष्मण को महामुनि विश्वामित्र को समर्पित कर दिया, दे दिया और कहा, हे महामुनि
मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को।
हे महामुनि, आज से इन दोनों के माता पिता आप ही हैं। महामुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर राजभवन से बाहर आते हैं। रास्ते में उन्हें ताड़का नाम की राक्षसी मिलती है, उसका अंत करते हैं और महामुनि विश्वामित्र से कहते हैं कि हे महामुनि आप अपना यज्ञ शुभारंभ कीजिए। उसी समय सुबाहु नाम का राक्षस आता है, उसको भी मारते हैं और मारीच को बिना फर के बाण से मारकर समुद्र के तट पर फेंक देते हैं। महामुनि विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राघव, अब यह यज्ञ तो पूर्ण हुई, अब हमें जनकपुर चलना चाहिए, क्योंकि वहां से महाराज जनक का संदेशा आया है, धनुष यज्ञ का आयोजन उन्होंने किया है। ये बात सुनकर राम और लक्ष्मण दोनों महामुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुर के लिए प्रस्थान करते हैं, बड़े प्रसन्नता के साथ चल देते हैं। रास्ते में गौतम ऋषि का आश्रम आता है, अहिल्या का उद्धार करते हैं और जनकपुर में प्रवेश करते हैं। वहां पर राम लक्ष्मण महामुनि विश्वामित्र का बहुत ही भव्य स्वागत होता है। जनकपुर चारों तरफ से सजा हुआ है, चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं। महाराज जनक यज्ञ मंडप को बहुत सुंदर सजाए हुए हैं, देश देशांतर के राजा लोग वहां पर विराजमान हैं, बड़े बड़े वीर पधारे हुए हैं, बाणासुर और रावण जैसे महाबली वहां पर पहुंच चुके हैं। महाराज जनक उसी सभा के मध्य में अपनी प्रतिज्ञा सुनाते हैं और कहते हैं, हे राजाओं, मैंने प्रतिज्ञा की है कि शिव के धनुष की चिल्ला को जो भी चढ़ाएगा मैं उसी के साथ अपने पुत्री सीता का विवाह करूंगा। सभी राजा लोग अपनी अपनी ताकत को अजमाते हैं, लेकिन चिल्ला चढ़ाने की बात कौन कहे, कोई भी राजा उस धनुष को हिला तक नहीं सकते। इस पर महाराज जनक बहुत दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, आज मैं ये समझ गया कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है।
तजहुवास निज निज गृह जाहू, और विधि ना लिखा वैदेहि विवाहु।
हे राजाओं, सभी लोग आशा त्याग कर अपने घर को जाओ, लगता है विधाता ने सीता के योग्य वर बनाया ही नहीं। ये सुनकर राजकुमार लक्ष्मण थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन महामुनि विश्वामित्र ने समझाते हैं और श्री राम से कहते हैं, बेटा राम उठो और जाओ, महाराज जनक की इच्छा की पूर्ति करो। धनुष के चीला को चढ़ाओ। गुरु की आज्ञा मानकर प्रभु श्री राम महामुनि विश्वामित्र को प्रणाम करके और धनुष के सामने खड़े होकर प्रभु श्री शिव जी का आराधना करते हैं, वंदन करते हैं और कहते हैं,
तुम्हारे धनुष को भगवान उठाने राम आया है, उठाने राम आया है, तेरे चरणों में सर अपना झुकाने राम आया है, झुकाने राम आया है, तुम्हारे धनुष को भगवान उठाने राम आया है, उठाने राम आया है। है चर्चा एक ही सब जुबां पर धनुष भारी है, बना दो फूल सा इसको प्रभु विनती हमारी है, भरोसे आपके बिगड़ी बनाने राम आया बनाने राम आया है, तुम्हारे धनुष को भगवान उठाने राम आया है, उठाने राम आया है। स्वयंवर में परेशान राजा सब खामोश बैठे हैं, ये अपने बल पे शर्मिंदा है, खोए होश बैठे हैं, करो अभिमान ना बल पर बताने राम आया है, बताने राम आया है, तुम्हारे धनुष को भगवान उठाने राम आया है, उठाने राम आया है। बड़े बलवान राजा आए हैं चारों दिशाओं से, उठा पाए नहीं शिव धनुष को अपनी भुजाओं से, इसी शिव धनुष का चिल्ला चढ़ाने राम आया है, चढ़ाने राम आया है, तुम्हारे धनुष को भगवान उठाने राम आया है, उठाने राम आया है, उठाने राम आया है।
कहीं छन राम
मध्य धन तोरा भरे भुवन धुन घोर कठोरा।
उसी क्षण प्रभु राम ने धनुष तोड़ दिया और पूरे महल में धनुष के टंकार का आवाज गूंज गया। महाराज जनक कहते हैं, बेटी सीते तुम राम को वरमाला पहनाओ। महाराज जनक की आज्ञा से सीता प्रभु राम को वरमाला पहनाती हैं। महामुनि विश्वामित्र महाराज जनक से कहते हैं, राजन अब आप अयोध्या को दूत भेजिए। महामुनि विश्वामित्र की आज्ञा से महाराज जनक उसी समय दूत अवध भेजते हैं। महाराज दशरथ अपने प्रवासियों के साथ जनकपुर में पधारते हैं। यहाँ महाराज जनक बहुत भाव के साथ स्वागत करते हैं और राम के विवाह के कार्य की आग्रह करते हैं। महाराज जनक दशरथ जी से कहते हैं, महाराज दशरथ हमारा आग्रह है कि हम अपने चारों पुत्रियों का विवाह आपके चार पुत्रों के साथ करें, यदि आपकी आज्ञा हो तो। दशरथ की आज्ञा से महाराज जनक अपने पुत्री सीता का विवाह राम के साथ, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ, मांडवी का विवाह भरत के साथ, सुतकृत का विवाह शत्रुघ्न के साथ विधि पूर्वक संपन्न करते हैं। विवाह का कार्य पूर्ण होने के पश्चात महाराज दशरथ अपने चारों पुत्र वधुओं को लेकर अवध के लिए प्रस्थान करते हैं। अयोध्या में चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, अयोध्या सजी हुई है और मंगल गान होते हैं। प्रसन्नता पूर्वक समय व्यतीत होने लगा। राजकुमार राम के विवाह को 12 वर्ष व्यतीत हो गए।
एक समय सब सहित समाजा राज सभा रघुराज विराजा।
एक बार महाराज दशरथ राजसभा बुलाई, सभा में समस्त पुरवासी और मंत्री विराजमान हुए। भरी सभा में महाराज दशरथ ने कहा, मैं चाहता हूं कि यह राज्य अपने उत्तराधिकारी को देकर मैं उस ईश्वर की भक्ति में लीन हूं और यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि श्री राम को अयोध्या का राजा बनाया जाए और सूर्यवंशी का ताज राम को पहनाया जाए। इस पर सारी सभा सहमति जताई। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से समय निश्चित किया गया, मगर ये बात देवताओं को अच्छी ना लगी।
सकल कहीं कब हुई हई काली, विघन मना वही देव कुचाली।
लेकिन ये बात देवताओं को अच्छा न लगी। वो कहते हैं, यदि राम राजा बन जाएंगे तो पाप ज्यों का त्यों बढ़ता जाएगा, पाप का अंत नहीं होगा, अधर्म का अंत नहीं होगा, इसलिए हे माँ सरस्वती राम को राजा नहीं होना चाहिए, कोई उपाय ढूंढो। सरस्वती का आवाहन करते हैं। सरस्वती माँ मंथरा के द्वारा केकई की बुद्धि भ्रष्ट करती हैं और केकई को भवन में चली जाती हैं। सायंकाल के समय महाराज दशरथ प्रसन्नता के साथ केकई के महल को जाते हैं। महाराज जब केकई के महल में पहुंचते हैं तो वहां मंथरा के द्वारा सुनते हैं कि महारानी केकई को भवन में है।
कोप भवन सुनी सकुच वराऊ, भय बस गहुण परय न पाऊ।
को भवन का नाम सुनते ही महाराज दशरथ भयभीत हो जाते हैं, लेकिन हिम्मत करके वो को भवन में प्रवेश करते हैं। केकई से बोलते हैं कि प्रिय केकई, आज ऐसे प्रसन्नता के समय पर, आज ऐसे मौके पर तुम्हारे अशुभ भेष क्यों है? क्या कारण है कि तुम इतनी नाराज हो, इतनी रूठी हुई हो? क्या चाहिए तुम्हें प्रिय, बोलो तो। केकई कहते कि महाराज, आपने पूर्व समय में देवासुर संग्राम के समय में दो वरदान देने को मुझे कहा था, लेकिन आज तक उसको नहीं दिया। आज मैं चाहती हूं कि हमारे वो दोनों वरदान पूर्ण किए जाएं। महाराज दशरथ कहते, बस प्रिय, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम रूठी हुई हो? दो के बदले चार मांग लो प्रिय। नहीं महाराज, ऐसे मैं नहीं मांग सकती, मुझे वचन दो कि आप हमारे मांगे हुए वरदान को पूर्ण करोगे। प्रिय केकई, हम रघुवंशी हैं,
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाए।
केकई रघुवंशियों के स्वभाव हैं, कि प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन वचन नहीं जाते हैं। जो चाहो मांग लो केकई, आज हम प्रसन्न हैं। केकई महाराज दशरथ से दो वरदान मांगती है कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, और देव एक बर भरत ही टीका, मांगहु दोसर बर कर जोरी, और पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेस विशेष उदासी, और 14 वर्ष राम बनवासी। मैं प्रथम बर भरत को राज तिलक और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास मांगती हूँ। महाराज दशरथ जैसे दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास सुनते हैं, तैसे दुखी होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। केकई तुमने क्या किया? इस वरदान के बदले मेरे प्राण क्यों नहीं मांग लिया? केकई तूने ये क्या किया? अयोध्या तो आज अनाथ हो जाएगी। उसी समय सुमंत जी महाराज का खबर लेने आते हैं और केकई सुमंत के द्वारा राम को बुलवाती हैं। और राम जब कोपभवन में आते हैं, माँ का वंदन करते हैं, पिता की तरफ बढ़ते हैं, पिता को इस अवस्था में देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। माँ से पूछते हैं, माँ पिताजी की ऐसी हालत क्यों है? माँ क्या कारण है बताओ माँ। केकई कहते, बेटा राम, आपके पिता महाराज दशरथ हमें दो वरदान देने को कहे थे, प्रेम बस तुम्हारे वो वचनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम दो वरदान मांगे, एक भरत को राज गद्दी, दूसरे तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। ये सुनते ही राम प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि माँ इस छोटी सी बात के लिए पिताजी दुखी हैं। यदि आपकी और पिताजी की आज्ञा हो तो 14 वर्ष कौन कहे 14 दिन तक वनों में वास कर सकता हूं, और मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं पिताजी की वचनों को पूरा करने के लिए वन को प्रस्थान कर सकूं। और माता पिता को प्रणाम करके पुनः वे माँ कौशल्या के महल में जाते हैं। उस समय माँ कौशल्या भगवान रंगनाथ की पूजा कर रही थी। राम माँ के चरण वंदन करते हैं और सारा वृत्तांत माँ से कह सुनाते हैं। माँ वन की बात सुनकर व्याकुल हो जाती है और राम को गले लगाती हैं। कहती हैं, बेटा राम, तुम्हें देखकर तो मैं जीवित हूँ। बेटा तुम मेरे आंखों के तारे हो, मेरा हृदय हो, तुम्हारे बगैर मैं कैसे अयोध्या में रह पाऊंगी बेटा। और ऐसा कहते कहते दुखी हो जाती हैं और कहती हैं,
चौदह बरस नहीं माये हैं चौदह पल, देखते देखते माँ ये जाएंगे ढल। चौदह बरस नहीं माये हैं चौदह पल, देखते देखते माँ ये जाएंगे ढल। जल्दी मैं आऊं माँ पास तुम्हारे, आके मैं छू लूं माँ चरण तुम्हारे। मेरी मैया तू रोना नहीं, रो रो के नैना भिगोना नहीं। ओ माँ मुझको निभाना पिता का वचन माँ।
राजकुमार राम
माँ से कहने लगे, माँ आपकी ममता आपका प्रेम मुझे बन नहीं जाने देगा। माँ मैं पिता की आज्ञा नहीं पूर्ण कर पाऊंगा, मैं माँ केकई की आज्ञा नहीं पूर्ण कर पाऊंगा, माँ मैं परवश हो जाऊंगा, मजबूर हो जाऊंगा। माँ कौशल्या कहती है, बेटा राम इसमें क्या केकई का भी आज्ञा है? हाँ माँ। माँ कौशल्या कहती है,
जो पित मातु कहउ बन जाना, तो कानन सतयवध समाना।
बेटा राम ये तो माता पिता दोनों की आज्ञा है, तो वो बन तुम्हारे लिए सोयोध्या के समान है। बेटा तुम अवश्य जाओ, मेरी ये आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये वार्तालाप हो रहा था उसी समय ये संदेश सीता के कानों में पड़ती है। सीता वहां से उठकर दौड़ती हुई माँ कौशल्या के भवन में आती है और वहां पर प्रभु श्री राम को भी देखती है। कहती, माँ यदि ये बन जाएंगे तो मैं अकेले कैसे यहां रहूंगी? हाँ बेटी, तुम्हारे विषय में मुझे भी चिंता है। बेटा राम, सीता किसके सहारे यहां रहेगी? सीता को कौन समझाएगा? ये सुनकर राम जी सीता को बहुत समझाते हैं और सीता राम जी के साथ बन जाने के लिए बहुत जिद करने लगी। और राम जी कहते हैं, प्रेषिते
मनो मेरा कहना यो ना जिद करना, सिया साथ ना चलो। मनो मेरा कहना यो ना जिद करना, सिया साथ ना चलो।
पुनः सीता प्रभु राम से निवेदन करती हैं, हे प्रभु आप तो ज्ञानवान हैं प्रभु, और आप शास्त्र के विरुद्ध कार्य करेंगे? शास्त्र कहता है कि पत्नी पति की अर्धांगनी होती है और पत्नी के बगैर कोई कार्य पूर्ण नहीं होते हैं। यूं कहकर सीता निवेदन करने लगी। हाँ प्रिय सीते, तुमने मुझे शास्त्र के उल्लंघन से बचा लिया। चलो सीते चलो, तुम अवश्य मेरे साथ चलो। उसी समय लक्ष्मण जी आते हैं और राम जी से अपने साथ वन ले जाने का आग्रह करते हैं। राम जी बहुत समझाते हैं, लेकिन लक्ष्मण कहते हैं, भैया राम, यदि आप मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं अयोध्या में नहीं रह पाऊंगा। राम जब उनके भाव को देखते हैं, कहते हैं, जाओ भैया लक्ष्मण, मां सुमित्रा से आज्ञा ले लो। लक्ष्मण जी मां सुमित्रा के पास जाते हैं और बन जाने की मां से आज्ञा चाहते हैं, और मां कहती है,
तात तुम्हारो मातु वैदेही और पिता राम सब भांति स्नेही।
हे बेटा लक्ष्मण, तुम्हारी माँ सीता है, पिता राम है, और उन्हीं की सेवा में तुम्हारा जीवन सार्थक है। राम, लक्ष्मण और सीता गृह वस्त्र धारण करते हैं और संसार को मर्यादा की शिक्षा देने के लिए वनों में प्रस्थान कर रहे हैं।
करते हैं कलाएं आकर के संसार को ये दिखलाते हैं, मर्यादा की शिक्षा देने को श्री राम बनों को जाते हैं। हाय ओ श्री राम अयोध्या छोड़ चले, श्री राम अयोध्या छोड़ चले, हमसे क्यों नाता तोड़ चले, हमसे क्यों नाता तोड़ चले, श्री राम अयोध्या छोड़ चले, हाय ओ हाय। एक पिता के वचनों की खातिर, एक पिता के वचनों की खातिर अयोध्या का राज भी त्याग दिया, संग सीता लखन को लेकर के वनवास का चोला डाल लिया। रोके है कौशल्या मात तुम्हें, रोके है कौशल्या मात तुम्हें, ओ है रोके है कौशल्या मात तुम्हें, मन को बेटा दौड़ चले, श्री राम अयोध्या छोड़ चले, हमसे क्यों नाता तोड़ चले, हाय ओ हाय। ये कैसी माया है जिसने, ये कैसी माया है जिसने इनकी है जुबां पे वास किया, देना था जिनको राज तिलक उनको ही है वनवास दिया,
जिन्हें राम ही सबसे प्यारे थे, जिन्हें राम ही सबसे प्यारे थे,
प्यारे थे, वो राम से ही मुँह मोड़ चले, श्री राम अयोध्या छोड़ चले, हमसे क्यों नाता तोड़ चले, है कहाँ से आई, हम रोता बिलखता छोड़ के क्यों अब वन को चले हैं रघुराई, स्वयं आप तो स्वामी जाते हो, स्वयं आप तो स्वामी जाते हो, स्वयं आप तो स्वामी जाते हो, हमें किसके सहारे छोड़ चले, श्री राम अयोध्या छोड़ चले, हमसे क्यों नाता तोड़ चले, है हो है अयोध्या छोड़ चले, हमसे क्यों नाता तोड़ चले, हमसे क्यों नाता तोड़ चले, श्री राम अयोध्या छोड़ चले, हमसे क्यों नाता तोड़ चले, है ओ है
श्री राम लक्ष्मण सीता सुमंत जी के साथ तथा समस्त पुरवासी तमसा नदी के तट पर पहुंचते हैं, वहां रात्रि हो जाती है, समस्त पुरवासी वहां सो जाते हैं। मध्य रात्रि में प्रभु श्री राम सुमंत से कहते हैं, तात तुम जल्दी यहां से रथ हाँको, नहीं तो अभी सारे प्रवासी जग जाएंगे और हमारे पीछे चल पड़ेंगे। रथ लेकर सुमंत जी श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं, वहां प्रभु श्री राम बट छीर मंगाते हैं और अपने जटा को बनाते हैं। अनुज सहित सिर जटा बनाए, और देखी सुमंत नयन जल छाए। प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ जब अपने जटा को बीनते हैं बनाते हैं, यह दृश्य देखकर सुमंत जी दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, राम अब लौट चलो, महाराज ने कहा था कि राम को वन दिखा करके लौटा लाना, बस चलो पिता की आज्ञा पूर्ण हो गई, राम चलो। श्री राम जी कहते हैं, सुमंत जी आप धर्म के ज्ञाता हैं, आप धर्म के ज्ञानी हैं, फिर भी आप ऐसे शब्द कह रहे हैं, मुझे पिता की आज्ञाओं को पालन करने से रोकते हैं। नहीं सुमंत जी, जाकर पिताजी को समझाना कि राम आपके वचनों का आपकी आज्ञाओं को पूर्ण करके तभी लौटेंगे, माताओं को मेरा प्रणाम कहना, पिता के चरणों में मेरा प्रणाम कहना सुमंत जी। यह सुनते ही सुमंत जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। राम लक्ष्मण सीता गंगा तट की ओर प्रस्थान करते हैं। आज के संचित कथा को यही मैं कौशलेंद्र मिश्रा विराम देता हूं। इस कथा के अगले प्रसंग के लिए दूसरे भाग की प्रतीक्षा करें। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आइए हम सब मिलकर उस भगत की आराधना को सुनें।
ये है नाइन स्टार की प्रस्तुति।